अध्याय चार लौकिकीकरण। अंग्रेजी शासन अपने साथ भारतीय सामाजिक जीवन और संस्कृति के लौकिकीकरण की प्रक्रिया भी लाया। यह प्रवृत्ति संचार साधनों के विकास, कस्बों और नगरों की वृद्धि, बढ़ी हुई स्थान मूलक गतिशीलता और शिक्षा के प्रसार के साथ साथ क्रमशः प्रबल हो गई। दोनों महायुद्धों और महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आंदोलनों ने जन साधारण को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से सक्रिय तो किया ही, लौकिकीकरण की वृद्धि में भी योग दिया। स्वतंत्रता के साथ तो लौकिकीकरण की प्रक्रिया का और भी व्यापक गहरा होना प्रारंभ हुआ, जो ऐसे सब कार्यों में प्रकट होता है जैसे भारत के धर्म निरपेक्ष राज्यों होने की घोषणा, कानून के आगे सब नागरिकों की समानता की संवैधानिक मान्यता, सार्वजनिक बालिग मताधिकार का प्रारंभ और योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रमों का ग्रहण। हम पहले देख चुके हैं कि संस्कृतिकरण का भी प्रसार हो रहा है और इसमें विरोधाभास लग सकता है कि आधुनिक भारत में संस्कृतिकरण और लौकिकीकरण दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। दोनों में से लौकिकीकरण अधिक सामान्य प्रक्रिया है जो सभी भारतीयों को प्रभावित करती है, जबकि संस्कृतिकरण का प्रभाव केवल हिंदुओं और जनजाति समूहों पर ही पड़ता है। मोटे तौर पर यह कहना सही होगा कि लौकिकीकरण शहरी और शिक्षित समूहों में अधिक होता है और संस्कृतिकरण नीची हिंदू जातियों और जनजातियों में। किंतु इस बात से को फिर से दोहराना आवश्यक है कि एक शताब्दी के पश्चिमीकरण का प्रभाव लौकिकीकरण पश्चिमीकरण में सम्मिलित है। यह है कि हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या हुई है जिसमें संस्कृतीय तत्व प्रमुख है। लौकिकीकरण शब्द में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जाता, और जिसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जाते हैं। चर्च और राज्य में अंतर तथा धर्म निरपेक्ष राज्य का भारतीय अवधारणा दोनों ही में एक ऐसे विभेदीकरण के अस्तित्व की स्वीकृति निहित है। लौकिकीकरण का दूसरा आवश्यक तत्व है बुद्धिवाद। बुद्धिवाद एक व्यापक शब्द है जो उन विविध सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रवृत्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका लक्ष्य जगत की विशुद्ध चिंतन के रूप में व्याख्या करना है, अथवा जो वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को तर्क बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार नियमित करना और समस्त तर्कहीन बातों को यथासंभव मिटाना अथवा पीछे ढकेलना चाहती है। अन्य बातों के अतिरिक्त बुद्धिवाद में पारंपरिक विश्वासों और धारणाओं के स्थान पर आधुनिक ज्ञान की स्थापना निहित है। यह मानना शायद ठीक होगा कि लौकिकीकरण की प्रक्रिया से भारत के अन्य किसी धार्मिक समूह की अपेक्षा हिंदू ही अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि एक तो पवित्रता अपवित्रता की धारणाएं जो हिंदू धर्म में केंद्रीय और व्यापक है पूर्वोल्लिखित विविध कारणों से बहुत छीड़ हुई, साथ ही हिंदू धर्म का कोई एक केंद्रीय देशव्यापी संगठन और उसका कोई एक प्रधान नहीं है, और वह जीवित बने रहने के लिए जाति, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय जैसी सामाजिक संस्थाओं पर अधिकतर निर्भर है जो महत्वपूर्ण बातों में बदलती जा रही है। यह संपूर्ण स्थिति हिंदू धर्म को लौकिकीकरण की शक्तियों के लिए विशेष रूप से वेद्य बना देती है। उससे हिंदुओं के विभिन्न वर्ग विभिन्न मात्राओं में प्रभावित होते हैं और आम तौर पर दूसरे लोगों की अपेक्षा नए अभिजन उससे कहीं अधिक प्रभावित होता है। लौकिकीकरण संबंधी विवेचन में मैं मुख्यतया मैसूर के अभिजन को ही ध्यान में रखूंगा, यद्यपि यह संभव है कि मेरी बातें थोड़े बहुत हेर फेर के साथ देश के अन्य भागों पर लौकिकीकरण के प्रभाव पर विचार करूंगा, फिर पुरोहित ब्राह्मणों के जीवन और स्थान में परिवर्तनों पर, और अंत में जाति, ग्रामीण समुदाय और संयुक्त परिवार में परिवर्तनों की हिंदू धर्म के लिए सार्थकता पर विचार करूंगा। हिंदू धार्मिक आचरण का कोई अध्येता अपवित्रता और पवित्रता की अवधारणाओं की अपेक्षा नहीं कर सकता। पवित्रता और अपवित्रता के लिए शब्द प्रत्येक भारतीय भाषा में मौजूद है और इनमें से प्रत्येक शब्द में अर्थ की ऐसी व्यापकता है कि संदर्भ के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। इस भांति पवित्रता से अभिप्राय मलिनता, कलंक, दूषित और परोक्ष रूप से पाप का भी हो सकता है, और पवित्रता का अर्थ स्वच्छता, पुष्यशीलता और परोक्ष रूप से धार्मिकता तक हो सकता है। विभिन्न जातियों के बीच संरचनागत दूरी अपवित्रता और पवित्रता के रूप में निर्धारित होती है। उच्चतर जाति अपने से निचली जातियों की तुलना में सदा पवित्र होती हैं और अपना उच्च स्थान बनाए रखने के लिए उसे निम्न जातियों से कुछ इस प्रकार के संपर्क से बचना चाहिए। साधारणतः उसे उनके हाथ का बना भोजन न खाना चाहिए और उनसे विवाह अथवा यौन संबंध न करना चाहिए। जहाँ एक जाति बहुत ऊंची और दूसरी बहुत नीची हो तो एक दूसरे को स्पर्श करने अथवा बहुत समीप जाने पर भी प्रतिबंध होता है। नियमों के उल्लंघन से उच्च जाति का व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और पवित्रता फिर से प्राप्त करने के लिए प्रायश्चित और प्रायः जाति की पंचायत द्वारा निर्धारित दंड भोगना जरूरी होता है। किंतु कभी कभी अपराध अत्यधिक गंभीर होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी ब्राह्मण अथवा उच्च जाति की स्त्री किसी अछूत पुरुष के साथ यौन संसर्ग हो जाए तो उसे सदा के लिए जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अपवित्रता और पवित्रता की अवधारणाएं केवल स्थिर ही नहीं गतिमान संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। परंपरा से जब कोई जाति समूह अथवा उसकी प्रशाखा ऊपर उठना चाहती है तो वह अपनी जीवन शैली का संस्कृतिकरण करती और उन जातियों के साथ पका हुआ भोजन करना बंद कर देती जिनके साथ पहले उनका खान पान का व्यवहार था। जाति सोपान के अनुरूप ही भोजन, धंधों और जीवन शैली की के भी सोपान है। उच्चतम जातियाँ शाकाहारी और मदिरा त्यागी होती हैं और निम्नतम मांस खाती हैं और देशी शराब पीती हैं। गांव के सुअर का मांस खाने से खाने वाला अपवित्र हो जाते हैं और गोमांस पर प्रतिबंध हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय को प्राप्त उच्च स्थान के कारण है। धंधों में जिसमें शारीरिक श्रम करना पड़ता है उन्हें निम्न समझा जाता है। शारीरिक श्रम वाले धंधों में से भी हो सकते हैं कि जिनमें गंदे या पवित्र करने वाले जैसे मल मूत्र आदि पदार्थों को छूना अथवा पशुवध जैसे पापपूर्ण कार्य करना आवश्यक हो सकता है। जाति व्यवस्था ही सबसे निचली सीढ़ी पर वे धंधे हैं जो पापपूर्ण अथवा अपवित्र दोनों होते हैं। न केवल जाति बल्कि रक्त संबंध भी अपवित्रता संबंधी धारणाओं से जुड़ा हुआ है। इस भांति जन्म और मृत्यु दोनों के परिणाम स्वरूप संगोत्री समूह के सदस्य निर्दिष्ट समय तक के लिए अपवित्र हो जाते हैं और मृत्युंजय अपवित्रता जन्म के निर्दिष्ट समय तक के लिए अपवित्र हो जाते हैं और मृत्युंजय अपवित्रता जन्म के कारण होने वाली अपवित्रता से अधिक तीव्र मानी जाती है। संगोत्री समूह में भी घनिष्ठतम संबंधियों के लिए जैसे विधवा, विधुर अथवा पुत्रों के लिए शोक काल अधिक दीर्घ होता है और निषेध भी अधिक विस्तृत होते हैं। यौन आरंभ पर लड़की को परंपरा के कई दिनों के लिए एक कमरे में अलग कर दिया जाता है और समाप्त होने पर पवित्र करने के लिए स्नान और कुछ कृत्य आवश्यक होते हैं। मासिक धर्म के दिनों में स्त्री को अपवित्र समझा जाता था। परंपरा से स्त्रियां मासिक धर्म होने वाले पर 3 दिन तक सब काम काज और घर के सब लोगों के संपर्क से अलग रहती थी। स्वेद के अतिरिक्त सब प्रकार का शारीरिक मल न केवल गंदा बल्कि अपवित्र करने वाला माना जाता था। यह भी एक कारण है कि उपासना के लिए या उपासना से पहले स्नान आवश्यक था और उपासना अथवा कर्म कांड करते समय कर्ता को अपने मल द्वारों पर नियंत्रण रखना पड़ता था। धार्मिक अवसरों पर जिसमें मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में महादेश्वर मंदिर अथवा दक्षिण केरल के विख्यात शास्त्र मंदिर की तीर्थ यात्राएं भी शामिल थी। रति समागम में भी संयम आवश्यक होता था। दैनिक काम में भी अपवित्रता और पवित्रता की धारणाएं परिव्याप्त थी। व्यक्ति की साधारण अवस्था हल्की अपवित्रता की मानी जाती थी और इसे बदलकर वह थोड़ी देर के लिए या तो पवित्र अथवा अत्यधिक अपवित्र हो सकता था। न केवल उपासना के बल्कि भोजन के समय भी उसका कर्मकांडीय रूप में पवित्र होना आवश्यक था। पवित्र होने के लिए स्नान करके कर्मकांडीय रूप से पवित्र वस्त्र पहनना आवश्यक था और उस समय परिवार के भी उन सदस्यों की स्पर्श से बचना आवश्यक था जो वैसी ही अवस्था में न हो। कुछ उत्सवों पर श्राद्ध के अवसर पर कर्ता कृत्य समाप्त होने तक जल भी ग्रहण नहीं कर सकता था। परंपरा के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपनी हजामत नहीं बनाता, हजामत नाई बनाता था और नाई का स्पर्श और हजामत के बालों दोनों अपवित्र करते थे। हजामत के बाद स्नान घर के बर्तन छूने का निषेध था, इसलिए व्यक्ति स्नान घर में फर्श पर बैठ जाता और अन्य कोई उसके ऊपर पानी डालता। पूरी तरह भीग जाने पर पानी से कुल्ला कर लेने के बाद ही बर्तनों को छूने की अनुमति थी। हजामत के स्थान को गोबर से पवित्र किया जाता था, इसलिए प्रारंभ में उच्च जातियों में सेफ्टी रेजर का प्रयोग कुछ विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें अपवित्रता निहित थी। रोज सेव करने की आदत से सप्ताह के कुछ तथा अन्य अशुभ दिनों में हजामत के निषेध का उल्लंघन होता था। सेफ्टी रेजर ने व्यक्ति के लिए चाहे जब और चाहे जहां शेव करना संभव बना दिया। मुझे याद है एक बार रामपुर में अपने अनुसंधान कार्य के दिनों में मैंने सवेरे स्नान के बाद सेव किया तो किसान मुखिया ने इसके लिए मुझे हल्का सा डांटा था। उसकी 10 वर्ष की नतनी अपवित्रता के प्रति मेरी उदासीनता की आलोचना करती थी। स्वयं उसके घर में सेफ्टी रेजर की मनाही थी और जब उसका लड़का मैसूर से मिलने आया तो मेहमानों के लिए प्रयुक्त पड़ोस के मकान में ही उसे रेजर का व्यवहार करने की अनुमति मिली। स्त्रियां विशेषकर विधवाएं और वयोवृद्ध पुरुष दोनों के लोगों की अपेक्षा अपवित्रता संबंधी नियमों का पालन करने में अधिक कट्टर होते हैं। उच्च जातियां नीची जातियों से ज्यादा कट्टर होती हैं। उच्च जातियों में ब्राह्मण सबसे कट्टर होते हैं और ब्राह्मणों में भी पुरोहित और पुजारियों की कट्टरता तो सभी से अधिक होती है। वास्तव में ब्राह्मणों का पवित्र अपवित्र की धारणाओं और कर्मकांडों में भी उलझे रहने को लेकर टीका टिप्पणी नहीं तो बहुत मजाक होता रहता है। पारंपरिक ब्राह्मण जीवन के लिए न केवल अवकाश चाहिए बल्कि स्थान मूलक गतिशीलता का अभाव भी आवश्यक है। यात्रा में कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बड़े कष्ट और अभाव का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार मलिनता और पाप की धारणाएं अपवित्रता के समीप पड़ती हैं, उसी प्रकार धार्मिकता पवित्रता के समीप है। सभी स्नान पवित्र करते हैं पर पुनीत नदी में स्नान से पापों का नाश होकर पुण्य का लाभ भी होता है। पुण्य स्नान मंदिर में पूजा हरि कथा कालक्षेप अन्य भक्तों के साथ भजन सत्संग उपवास प्रार्थना और ध्यान धार्मिक जीवन की यही सारी सार वस्तुएं हैं जो लौकिक कार्यों में लीन जीवन से भिन्न है। पवित्र अपवित्र की धारणाएं पिछले कुछ दशकों में पूर्वोल्लिखित शक्तियों के कारण छीड़ भी हुई हैं और उनकी व्यापकता में भी घटी है। यहाँ इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि यात्रा और चाय की दुकानों की लोकप्रियता शहरियों तक ही सीमित नहीं देहातियों तक पहुंच चुकी है। जब मैंने 1948 में रामपुर में अपना शोध कार्य प्रारंभ किया तो मुझे पास के गांव तक पैदल जाते देखकर गांव वाले को आश्चर्य होता था। बसें थी तो पैदल जाने की क्या जरूरत है। जब मैं 1952 में उस गांव में दोबारा गया तो मैंने पाया कि यात्रा की लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है और मुखिया ने बसों में पैसा लगा रखा है। शहरी जीवन में अपने लगाव दबाव होते हैं और व्यक्ति का नित्य क्रम उसके रहने का स्थान उसके भोजन के समय जाति और धर्म की अपेक्षा उसके नौकरी से अधिक निर्धारित होते हैं। यह और भी सही है कि यदि वह जिस शहर में रहता है वह बंगलुरु अथवा भद्रावती जैसा अत्यधिक उद्योग प्रधान हो, मैसूर जैसा नहीं जो 1 नवंबर 1956 तक एक बड़े कन्नड़ भाषी राज्य का भाग बनने से पहले राज्य की केवल पारंपरिक राजधानी होने के कारण ही महत्वपूर्ण था। इससे भी प्रभावशाली बात यह है कि गांव में शहरों में आने वाले किसी हद तक जाति और संगोत्रता के दबावों से छूट जाते हैं और उनके लिए अपने साथ करने वालों और पड़ोसी समूह की मान्यताओं के अनुरूप चलना आवश्यक हो जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शहरी जिंदगी में पारंपरिक जीवन पद्धति बिल्कुल छूट जाती है। वास्तव में यह सभी ने देखा होगा कि आचरण संदर्भ के अनुरूप होता है और लोग उसकी असंगतियों की हमेशा परवाह नहीं करते। एक नायर सूचनादाता ने कैथलीन गप से कहा था, जब मैं दफ्तर जाने के लिए अपनी कमीज पहनता हूँ तो जाति को उतार कर रख देता हूँ और जब दफ्तर से लौट कर कमीज उतारता हूँ तो जाति को पुनः पहन लेता हूँ। किंतु दीर्घकालीन आधार पर ऐसी संदर्भगत विभिन्नता आमतौर पर अंत में आचरण के संपूर्ण लौकिकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इस भांति उदाहरण के लिए मैसूर में 1930 के आसपास वैदिक ब्राह्मण कॉफी घरों में नहीं जाते थे, उनमें भी नहीं जहां रसोइये ब्राह्मण थे। वयोवृद्ध लौकिक ब्राह्मण भी वहां जाना पसंद नहीं करते थे और अंततः ही कभी जब वे जाते भी थे तो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित एक अंदर कमरे में बैठते थे और एल्यूमिनियम और पीतल की अपवित्र प्लेटों के बजाय पत्तों पर खाते थे। अब ब्राह्मणों के लिए आरक्षित कमरे बहुत कम कॉफी घरों में ही होते होंगे। वास्तव में ऐसा आरक्षण कानून के विरुद्ध होगा। शहर के सबसे लोकप्रिय कॉफी घरों के ग्राहक सर्वदेशी होते हैं और बहुत कम ग्राहक रसोइयों और वेटरों की जाति की चिंता करते हैं। अब स्त्रियां भी कभी कभी कॉफी घरों में जाने लगी हैं और उसमें परिवारों के लिए विशेष स्थान होते हैं जहां वे एकांत में खा सकती हैं। अधिक शिक्षित ग्राहक कॉफी घरों में स्वच्छता के बारे में तो चिंतित होते हैं, जाति के बारे में नहीं। बहुत से लोग पश्चिमी ढंग के कॉफी हाउसों को पसंद करते हैं जो अधिक स्वच्छ और शांत दिखाई पड़ते हैं तथा नए ढंग की वस्तुएं बेचते हैं और प्रायः कॉफी हाउसों में सीमित शमिष और निरामिष दोनों प्रकार का खान मिलता है और ब्राह्मण नव युवकों को ऑमलेट तथा वर्जित खाद्य पदार्थों के साथ प्रयोग करते देखा जा सकता है। जनता के सभी वर्गों में शिक्षा के प्रसार के परिणाम स्वरूप पवित्रता की पारंपरिक धारणाओं का स्थान स्वास्थ्य की के नियम लेते जा रहे हैं। पवित्रता और स्वच्छता के बीच प्रायः टक्कर हो जाती है। मैंने बहुत से शिक्षित ब्राह्मणों को कट्टर पंथियों द्वारा पहने जाने वाले पवित्र वस्त्रों की जिंदगी और अस्वस्थ कर अवस्था के प्रति घिन प्रकट करते हुए सुना है। ब्राह्मण रसोइये प्रायः एक गंदे कपड़े पहने होते हैं या गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए काम में लाते हैं जो घुले हुए तो होते हैं पर जिन्हें कीटाणुहीन अथवा साबुन से साफ नहीं किया गया होता। तीर्थ स्थानों की गंदगी पर प्रायः शिक्षित हिंदुओं में चर्चा चलती है जो गंगा की पवित्रता की अपेक्षा उसमें गिरने वाले नालों से अधिक चिंतित होते हैं। किंतु केवल यही एक प्रवृत्ति नहीं है। शिक्षित हिंदू पारंपरिक आचरण की बुद्धि संगत व्याख्या करते हुए भी पाए जाते हैं। उसके अनुसार पवित्रता स्वास्थ्य परकता से अधिक कुछ नहीं है और उसे धार्मिक आचरण के अंतर्गत इसलिए रखा गया है जिससे लोग उस पर अधिक ध्यान दें। अपवित्रता के विषय में बदले हुए रवैये के किसी भी विवेचन में मैसूर की ब्राह्मण स्त्रियों में शिक्षा की सारी लोकप्रियता पर ध्यान देना आवश्यक है। पुराने जमाने में स्त्रियां अपवित्रता के बारे में अत्यंत सजग होती थीं और अपवित्रता व्यवस्था का हृदय रसोई घर ही था। उसके विपरीत आधुनिक शिक्षित गृहिणी को अपवित्रता के बारे में बहुत चिंता नहीं। वह स्वास्थ्य परकता और पौष्टिकता के लिए कहीं अधिक सजग होती हैं। बहुत सी स्त्रियां अपवित्रता के नियम अपने माता पिता अथवा सास ससुर के साथ रहने पर ही निभाती हैं। अलग गृहस्थी बसाते ही वे उन नियमों के बारे में शिथिल हो जाती हैं। पारंपरिक संयुक्त परिवार से भिन्न यदि घर में एक ही वयस्क स्त्री हो तो अपवित्रता के नियम का कठोरता से पालन आसान नहीं है। संयुक्त परिवारों में अपवित्रता के नियमों का कट्टरता से पालन तभी संभव हो पाता है जब घर में वृद्धा विधवाएं हो जिनका रसोई घर और रसोई घर में या उसके आसपास की स्थित घर के देवस्थान में केंद्रित हो। पुराण पंथी हिंदू धर्म के अपवित्रता तथा कर्म कांड में से मोह की आलोचना का एक अन्य प्रबल कारण 19वीं शताब्दी में पारंपरिक धर्म की पुनर्व्याख्या का आंदोलन था। वह मूलतः एक निष्ठावादी आंदोलन था जिससे हिंदू धर्म के सार को उसकी ऐतिहासिक अभिवृद्धियों से अलग करने का प्रयास हुआ था। कर्मकांड और अपवित्रता के नियमों को सच्चे धर्म से बाह्य बल्कि गलत बताया गया और भक्ति तथा सरलता को सार कहा गया। इस विचार को भगवत गीता और संतों के जीवन से समर्थन भी मिलता था। लौकिकीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले एक अन्य क्षेत्र है जीवन चक्र का कर्मकांड। जीवन चक्र के विभिन्न मोड़ों पर होने वाले संस्कारों में कुछ संक्षेप में हुआ है, साथ ही उनके नितांत सामाजिक पक्षों ने पहले से ज्यादा महत्व प्राप्त कर लिया है। कुछ ऐसे संस्कारों को जैसे नामकरण, चौल, उपाकर्म को अब छोड़ने की प्रवृत्ति शुरू हो रही है। लड़कियों के लिए यौवना आरंभ पर वह विस्तृत कर्मकांड नहीं किया जाता जो कुछ दशक पहले तक अनिवार्य था। मृत पति के दाह संस्कार के अंग के रूप में ब्राह्मण विधवा का मुंडन भी अधिकतर नहीं किया जाता और शिक्षितों में विधवा विवाह को इतना अधिक निध्य नहीं समझा जाता। संस्कारों को केवल छोड़ा अथवा संक्षिप्त किया जाता है बल्कि उन्हें एक दूसरे में मिला दिया जाता है। यद्यपि ऐसा अपेक्षाकृत कम होता है, इस भांति विवाह संस्कार को प्रारंभ में उपनयन संस्कार के साथ और अंत में गर्भाधान संस्कार के साथ मिलाया जाता है। वास्तव में केवल दाह संस्कार और वार्षिक श्राद्ध ही पहले किसी कट्टरता से किए जाते हैं। यद्यपि इनमें भी संस्कार में भाग लेने वाले संगोत्र समूहों के संबंध में परिवर्तित हुए जान पड़ते हैं। संगोत्र लोगों के बड़े क्षेत्र में बिखर जाने के कारण भी यह परिवर्तित हुआ है। जिस प्रकार विवाह संस्कार संक्षिप्त हुआ वह रोचक है। पहले जमाने में सर्व संस्कार युक्त ब्राह्मण विवाह में 5 से 7 दिन तक लगते थे, किंतु अब अधिकांश असंस्कृति और लाक कर्मकांड जो परंपरा से स्त्रियों के एकांत अधिकार में रहता है छोड़ दिया जाता है। बल्कि यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है कि संस्कृतीय कर्मकांड को भी संक्षिप्त करके एक ही दिन के कुछ एक घंटों में पूरा कर लिया जाए। कन्यादान और सप्तपदी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्यों के संबंध में केवल संबद्ध रिश्तेदार ही मौजूद रहते हैं और अधिकांश अतिथि समुदाय लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वागत समारोह में भाग लेता है। स्वागत समारोह में वर वधु किसी बड़े हाल में एक किनारे पर एक सोफे पर बैठते हैं। दोनों अपने सबसे बढ़िया वस्त्र पहनते हैं और आम तौर पर ससुराल से मिला गरम सूट पहनता है। अतिथियों का आते ही दंपति से परिचय कराया जाता है, जिसके बाद वे कुछ देर संगीत सुनते हैं और फिर एक कागज का थैला लेकर जिसमें एक नारियल और 5 सुपारियां होती हैं चले जाते हैं। स्वागत समारोह में बड़ा खर्च पड़ता है क्योंकि सहालग के दिनों में नारियल के दाम और संगीतज्ञों की फीस दोनों बहुत चढ़ जाते हैं, किंतु मेहमानों की संख्या और उनका सामाजिक महत्व उस अवसर पर बुलाए गए संगीतज्ञ का अपने पेशे में स्थान विवाह के भवन के बाहरी खड़ी हुई कारों की संख्या, रोशनी और सजावट और वर वधु द्वारा प्राप्त उपहार, ये सब दोनों परिवारों की स्थानीय समाज में हैसियत और प्रभाव के सूचक माने जाते हैं। निमंत्रण मंत्रियों तथा अन्य प्रमुख राजनीतिज्ञों को, बड़े सरकारी अफसरों तथा अन्य स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों को भेजे जाते हैं, जिसमें इन महत्वपूर्ण लोगों के संपर्कों का प्रदर्शन हो सके, उन्हें बढ़ाया तथा मजबूत किया जा सके। विवाह का यह स्वागत समारोह एक नई प्रथा है। कन्नड़ भाषा में रिसेप्शन शब्द आ गया है और उसकी सारी लोकप्रियता ब्राह्मणीय जीवन और संस्कृति के लौकिकीकरण में वृद्धि के अनेक सूचकों में से एक है। बढ़े हुए लौकिकीकरण का एक अन्य प्रमाण है पिछले कुछ दशकों में दहेज प्रथा के महत्व का इतना अधिक बढ़ जाना। दहेज न केवल मैसूर के तथा अन्य दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों में बल्कि देश भर के बहुत से उच्च जाति समूहों में प्रचलित है। दहेज में बड़ी बड़ी रकमें मांगी जाने के कारण 1961 में भारतीय संसद ने दहेज निवारक अधिनियम 1961 का 28वां अधिनियम स्वीकार किया। अभी तक तो इस प्रथा को रोकने में अधिनियम का कोई खास सफलता नहीं मिली है। मैसूर में के ब्राह्मणों में और यह शायद बहुत से अन्य समूहों के बारे में भी सही हो, दहेज प्रथा की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि इंजीनियर, डॉक्टर और प्रतिष्ठा सूचक भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण युवक दूसरों की अपेक्षा बड़ी रकमें पा सकते हैं। दैनिक कर्मकांड में लगने वाला समय भी ब्राह्मण पुरुषों और स्त्रियों के लिए निरंतर कम होता जा रहा है। इंगोल्स ने कहा है, परिवार का मुखिया धार्मिक कृत्यों में, संध्या में, स्नान में, पूजा में, अग्नि कृत्य में, वेद पाठ में दिन में 5 घंटे या उससे भी अधिक समय लगाता है। ब्राह्मण की पत्नी अथवा उसके परिवार की कोई अन्य स्त्री घर में स्थापित देव मूर्तियों की पूजा में रोज 1 घंटा लगाती है, पर किसी एक दिन में 5 घंटे कर्मकांड में लगाने के लिए यह आवश्यक है कि या तो उसका कोई स्वतंत्र आमदनी का साधन हो अथवा उसका पुरोहिती का ही धंधा हो। परंपरा से हिंदू राजा अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर तथा राज परिवार में जन्म, विवाह अथवा मृत्यु के अवसर पर निष्ठावान ब्राह्मणों की भूमि और भवन इत्यादि दान में दिया करते थे। ऐसे कार्यों से राजवंश को पुण्य प्राप्त होता था, किंतु जैसे जैसे मैसूर के ब्राह्मण अधिकाधिक नागर होते गए और उनमें पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, वैसे वैसे कर्मकांड, प्रार्थना, उपवास आदि का जीवन बिताना और अपवित्रता के नियमों का निष्ठा पूर्वक पालन करना उनके लिए अधिकाधिक कठिन होता गया। मिल्टन सिंगर ने मद्रास के ब्राह्मणों में भी ऐसी ही प्रक्रिया देखी है, अर्थात अपनी नई व्यस्तताओं में कम से कम इस समय इस बात के लिए मिलता कि संस्कृत ज्ञान प्राप्त कर सके और धर्मशास्त्र द्वारा विहित कर्मकांड का पालन कर सके। ब्राह्मण होने के नाते इन दो कार्यों का उन पर प्राचीन और पेशे का दायित्व था, किंतु इन कार्यों को उन्होंने पूरी तरह नहीं छोड़ा है और किसी हद तक उन्होंने ऐसे क्षतिपूर्वक कार्य प्रारंभ कर दिए हैं जो उन्हें पूर्ण विसंस्कृतिकरण होने और पारंपरिक संस्कृति से कट जाने से बचाता है। ब्राह्मण लड़कियों की विवाह की आयु में तीव्र वृद्धि के कारण उनके लिए उच्चतर शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाना संभव हो गया और उसके परिणाम स्वरूप कर्मकांड और पवित्रता के निर्धारक स्थान रसोई घर का अतिक्रमण हुआ। परंपरा से ब्राह्मण कन्या विवाह होकर अपनी ससुराल जाने के पहले अपनी माँ के साथ रसोई घर और उसके आसपास काम करती थी। उसे यही आशा की जाती थी कि उसे रसोई बनाने तथा अन्य घरेलू कामकाज का ज्ञान हो। लड़कियों द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड की तथा जाति और अपवित्रता के नियमों की जानकारी हो और वह अपने पति, सास ससुर तथा ससुराल के अन्य गुरुजनों का सम्मान करे, उनकी आज्ञा माने। शिक्षा ने लड़कियों की दृष्टि ही बदल दी और उनमें नए विचारों और आकांक्षाओं को जगाया। निश्चय ही उसमें अपवित्रता संबंधी नियमों और कर्मकांड के बारे में उनकी कट्टरता भी कम की। यद्यपि जब तक वे अपने ससुराल वालों के साथ रहती तब तक उनकी पूरी तरह उपेक्षा नहीं कर सकती थी। अब बहुत कम शहरी ब्राह्मण माँ बाप यह कहेंगे कि शिक्षा लड़कियों के लिए आवश्यक नहीं है। यद्यपि इस बात में मतभेद होगा कि कितनी शिक्षा वांछनीय है। एलिन रॉस ने हाल ही में बेंगलुरु के एक शहरी परिवार का क्षेत्र अध्ययन करने के बाद इन शब्दों में सारांश प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर इस अध्ययन से प्रकट है कि मध्य और उच्च वर्गों की कुछ हिंदू लड़कियों को अभी शिक्षा विवाह के उद्देश्य से दी जाती है, आजीविका के लिए नहीं, किंतु बहुत से माँ बाप अपनी लड़कियों को विश्वविद्यालयों में पढ़ाने को उत्सुक थे। शायद इस नई प्रवृत्ति का एक मुख्य कारण यह है कि बाल विवाह के बजाय वयस्क विवाह प्रारंभ होने से 19 तक अथवा 25 वर्ष तक लड़कियों के अवकाश के समय को भरना आवश्यक है और विवाह तक उन्हें व्यस्त रखने का एक उपाय कॉलेज है। एक अन्य कारण कई लोगों ने यह बताया कि अपनी लड़कियों के लिए उपयुक्त वर मिलने में कठिनाई के कारण कभी कभी माँ बाप उनकी शिक्षा जितना चाहते थे उसके बाद भी चलाए जाते हैं। इस भांति बहुत सी लड़कियाँ नौकरी करती हैं, स्पष्ट ही इसलिए नहीं कि वे नौकरी करना चाहती हैं, बल्कि इस कारण कि वे जब तक उनके माँ बाप उनके लिए पति न खोज लें तब तक और कुछ करने को नहीं है। मगर यह सही है कि आजकल शहरों में बहुत सी स्त्रियाँ शिक्षिका, क्लर्क, डॉक्टर, नर्स आदि के रूप में नौकरी करती हैं और पारंपरिक समाज की दृष्टि से यह सचमुच क्रांतिकारी है। यह आशा स्वाभाविक है कि स्त्रियों की शिक्षा से परिवारों के सामाजिक जीवन और संस्कृति में मूलभूत परिवर्तन होंगे। रॉस ने बंगलुरु में शिक्षित स्त्रियों के अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि क्रमशः परिवार की स्त्रियां पारिवारिक परंपरा और जाति संबंधी रीति रिवाजों की सबल ऋण नहीं रहेंगी, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि परंपरा से पूर्ण विच्छेद हो गया है। अब कर्मकांड में घंटों भले ही न लगाए जाते हों, पर आमतौर पर घर में एक वेदी होती है जिसके आगे दीपक जलाने और प्रार्थना करने की का काम होता है। अपवित्रता से मुक्ति इस हद तक नहीं जाती कि शिक्षित ब्राह्मण स्त्रियां हरजन तो दूर हर जाति के ब्राह्मण में कुछ खा ले। अंतर्गामी घेरा बड़ा अवश्य हुआ है और उपजातियों के निषेध टूटे हैं। उदाहरण के लिए अब मांड्या के श्री वैष्णव ब्राह्मणों की भी उपशाखाओं की उपेक्षा कर सकता है। फिर भी ब्राह्मणों तथा ओक्कलिग अथवा लिंगायत जैसे अन्य जातियों के बीच विवाह अभी इक्का दुक्का ही होते हैं। ब्राह्मणों के आहार में परंपरा से वर्जित अंडे शामिल होने पर भी सामिस भोजन अभी दुर्लभ है। शिक्षित हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों का अध्ययन अभी शुरू हुआ है। विषय और आत्यंतिक महत्व के अतिरिक्त पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के किसी अध्ययन में धर्म संबंधी परिवर्तनों की अवहेलना करना संभव नहीं। लौकिकीकरण बल्कि राजनीतिकरण भी शहरी धर्म की एकमात्र न होने पर भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध दशहरा अथवा नवरात्रि उत्सव का, जो मैसूर के राज परिवार से जुड़ा हुआ था और बड़े ठाट बाट और धूमधाम से मनाया जाता था, भूतपूर्व रियासत के नए और 72 मैसूर राज्य में विलय के बाद से स्वरूप बदल गया है। राज्य की राजनीति में प्रमुख लिंगायत जाति द्वारा सत्ता प्राप्ति और पहले से अधिक प्रादेशिकता दोनों को इस बात में अभिव्यक्ति मिली है कि उत्सव में लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वशव का जन्म समारोह 1950 के बाद से अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। उत्सव कई दिन चलता है और उन सब बड़े कस्बों और शहरों में मनाया जाता है जहाँ लिंगायतों की बहुतायत है। दीपावली, संक्रांति, उगाड़ी और रामनवमी राज्य के अधिकांश हिंदू समूहों के लिए सामान्य है, जबकि गोपाष्टमी और शिवरात्रि का मुख्यतः सांप्रदायिक स्वरूप है। रामनवमी केरल को छोड़कर समस्त दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अवसर है। जब उत्सव के 9 दिन तक सभी नगरों में दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रियता पिछले 2-3 दशकों में बहुत अधिक बढ़ गई है और संगीत प्रेमी धार्मिक हो या न हो, रामनवमी की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। संगीत आयोजनों में श्रोताओं की भीड़ रहती है और वे उन सबके लिए खुले होते हैं जो प्रवेश शुल्क दे सके। किंतु जहां तक इसमें संदेह नहीं कि उत्सव का कुछ लौकिकीकरण हुआ है, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत मूलतः भक्ति प्रधान है और जिन महान रचनाकारों की कृतियां सम्मेलनों में गाई जाती हैं, वे सभी भक्त थे। जैसा सिंगर ने ठीक कहा है, धर्म और संस्कृति के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है और पारंपरिक सांस्कृतिक माध्यम न केवल नगर में बटे हुए हैं बल्कि नए रूपों में एक उदीयमान लोकप्रिय और शास्त्रीय संगीत संस्कृति के समाविष्ट कर लिए गए हैं। हाल के वर्षों में मंदिरों में बहुत सक्रियता दिख पड़ी है और वे दशहरा, रामनवमी और अन्य अवसरों पर हरि कथा का आयोजन करने लगे हैं। हरि कथाएं कई दिनों तक, कभी कभी कई सप्ताह तक चलती रहती हैं और विलास श्रोता समुदाय को आकर्षित करती हैं, जो मंदिर का प्रांगण भर जाने के बाद बाहर सड़क पर एकत्र कथा और गीत सुनते रहते हैं। इन कथाओं में ध्वनिवर्धक यंत्र आवश्यक समझे जाते हैं। अध्यवसायी स्वभाव के धार्मिक व्यक्ति यज्ञों का आयोजन करते हैं जिनमें धन, समय और शक्ति सबकी प्रचुर परिमाप में आवश्यकता होती है और जो कई दिनों तक चलते रहते हैं। उदाहरण के लिए यज्ञ सूखा समाप्त करने के लिए अथवा लोक कल्याण के लिए हो सकता है। एक अन्य लोकप्रिय कार्य है राम अथवा अन्य किसी देवता का नाम 1 अरब बार लिखने का व्रत लेना और फिर उस अवसर पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन करना, नाम लिखने के लिए सैकड़ों स्वयं सेवी एकत्र किए जाते हैं, बहुत धन एकत्र होता है, समारोह को देखने के इच्छुक भक्तों के लिए विस्तृत प्रबंध किए जाते हैं और इस कार्य में मंत्रियों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों सहित अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को संबद्ध करने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय समाचार पत्र समारोह के अंतिम चरण के वर्णन के लिए पर्याप्त स्थान देते हैं कि कितने लोग एकत्र हुए, उनकी सुविधा के लिए प्रबंध कैसा था और फिर कर्मकांड तथा भाषण तो है ही। तीर्थ यात्राएं भी बड़ी लोकप्रिय हैं और लोगों की धार्मिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के साथ ही उन्हें देश देखने का अवसर भी देती हैं। पर्यटक वर्ष इन्हें इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि वे प्रत्येक यात्रा में तीर्थ क्षेत्र तथा पर्यटकों के लिए आकर्षक दोनों प्रकार के स्थानों को सम्मिलित करती है। लोगों का सामाजिक तथा धार्मिक क्षितिज पहले से बहुत विस्तृत हो गया है। रामपुर गाँव कि किसान जो दूसरे महायुद्ध के पहले केवल आसपास के मंदिरों तक ही जाते थे, अब नियमित रूप से आंध्र प्रदेश में विख्यात तिरुपति मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। रामपुर के गांव के धनी किसान दक्षिण भारत के बड़े तीर्थ स्थानों में भी आए हैं, जैसे रामेश्वरम, मदुरै, श्रीरंगम। शहरों में पढ़े बढ़े हुए लोग कम से कम एक बार बनारस, इलाहाबाद और सुदूर उत्तर प्रदेश में हरिद्वार तक हो आते हैं। एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय यात्रा एजेंसी उनके लिए स्पेशल गाड़ी यात्री गाड़ियों की व्यवस्था करती है। शिक्षित तीर्थयात्री जहां जाते हैं वहां ठहरने खाने की इच्छा अच्छी व्यवस्था के प्रति उदासीन नहीं होते, वे थोड़ा बहुत दर्शनीय स्थानों को देखने और खरीदारी का काम भी करते हैं। कभी कभी इन बातों की इसके प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है कि आधुनिक तीर्थयात्रियों में धार्मिक भावना सर्वथा अनुपस्थित नहीं हो तो अत्यंत छीड़ अवश्य होती है और ये यात्राएं केवल भ्रमण और देशभक्ति के साथ दर्शनीय स्थानों की सैर के अवसर जुटाती है। इस दलील में यह मान लिया जाता है कि पारंपरिक तीर्थ यात्राओं में केवल धार्मिक उद्देश्य ही रह सकता था, जो सर्वथा सत्य नहीं जान पड़ता, क्योंकि पारंपरिक तीर्थ स्थान भी बड़े विक्रय केंद्र होते थे और तीर्थ यात्राओं से लौटने वाली वृद्धाएं बड़े विस्तार से सुनाया करती थी कि उन्होंने कैसी कैसी चीजें देखी, फलों और सब्जियों की कैसी कमी या प्रचुरता थी और अमुक स्थान पर दूध और घी की क्या भाव थे। मैसूर के ब्राह्मण दक्षिण भारत के अन्य द्रविड़ भाषा भाषी ब्राह्मणों की भांति परंपरा से तीन प्रसिद्ध संप्रदायों में से एक के अनुयायी होते हैं, स्मार्त, श्री वैष्णव और माधव। प्रत्येक संप्रदाय के कुछ मठ जिसका मठाधिपति या स्वामी होता है और परंपरा से मठाधिपति ही अपने अनुयायियों के आचरण का नियंत्रण करता है। संप्रदाय की दीक्षा मठाधिपति द्वारा ही दी जाती है थी और जब मठाधिपति उनके नगर या गांव में पधारते तो उनकी पाद पूजा द्वारा उनका उचित सम्मान किया जाता था। मठाधिपति को समस्त धार्मिक विषयों में जाति संबंधी विवादों में भी चरम निर्णायक माना जाता था और यदि किसी को जाति की पंचायत ने बहिष्कृत कर दिया हो अथवा कोई दंड दिया हो तो वह उसके विरुद्ध मठाधिपति से आवेदन कर सकता था। मठाधिपति की यह क्षमता अब काम में नहीं आती, यहाँ तक कि विदेश गमन के बाद लौटने पर जो प्रायश्चित की व्यवस्था थी वह भी विदेश यात्रा की लोकप्रियता तथा ब्राह्मणों के बढ़े हुए लौकिकीकरण के कारण अब व्यर्थ हो गई है। किंतु मठाधिपतियों के अधिकारों में बहुत कमी होने के बावजूद अपने अनुयायियों का आदर और भक्ति उन्हें अब भी प्राप्त है। हाल के वर्षों में मठाधिपतियों और जनसाधारण के बीच संपर्क कुछ बढ़ा जान पड़ता है। राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार तथा अन्य कानूनों को स्वीकार करने से मठों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा आघात हुआ है, जिसने उनकी धार्मिक स्वायत्तता में भी कमी कर दी है। इसके परिणाम स्वरूप मठाधीश अब पहले की अपेक्षा अपने अनुयायियों का अधिक ध्यान रखने लगे हैं। बहुत से शिक्षित लोग अब आध्यात्मिक तथा अन्य प्रकार के मार्गदर्शन के लिए अपने संप्रदाय के स्वामी की ओर उन्मुख होने लगे हैं। हाल के वर्षों में जीवित अथवा कुछ समय पूर्व मृत संतों के इर्द गिर्द नए नए पंथ भी पैदा हुए हैं। आधुनिक भारत के एक संत साईं बाबा के, जिनकी समाधि महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में शिरडी में है, दक्षिण भारत में बहुत से अनुयायी हैं और बहुत से दक्षिण भारतीय नगरों में साईं बाबा प्रार्थना समूह है। शिरडी उनका प्रिय तीर्थ स्थान है। मद्रास राज्य में तिरुवन्नामलय में रमण महर्षि की समाधि पर भी लोग जाते हैं, पर उनका पंथ साईं बाबा के पंथ जैसा लोकप्रिय नहीं है। जीवित पुरुषों में स्वामी चिन्मयानंद बहुत लोकप्रिय हैं और उनके व्याख्यानों में बहुत श्रोता उपस्थित होते हैं। रामकृष्ण मिशन भी बहुत से लोगों के धार्मिक रुझान के लिए केंद्र का काम करता है। नए पंथों का उदय और उनके द्वारा पूरे होने वाले कार्य ऐसे विषय हैं जिनका व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने की आवश्यकता है। सिंगर ने कहा है कि सामूहिक माध्यमों के प्रभाव से पारंपरिक धार्मिक संस्कृति का लौकिकीकरण इतना नहीं किया है जितना उनका जनवादीकरण किया है। स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में हिंदू पुराणों और महाकाव्यों के प्रसंग प्रादेशिक संतों के जीवन चरित्र और प्राचीन कवियों की रचनाओं के अंश होते हैं, जिनकी विषय वस्तु प्रायः सदा ही धार्मिक अथवा नैतिक होती है। पत्रिकाओं और पुस्तकों में धार्मिक सामग्री बहुत होती है और बच्चों का लोकप्रिय कथा मासिक चंदा मामा, बच्चों की कहानियों के लिए महाकाव्य भागवत पुराण आदि के अनंत भंडार का ही सहारा लेता है। आकाशवाणी से रोज सवेरे भक्ति संगीत और कभी कभी हरि कथा का प्रसारण होता है। बड़े बड़े त्योहारों के अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं, जिनमें हिंदुओं की पारंपरिक संस्कृति से ही सामग्री जुटाई जाती है। बहुत सी फिल्मों की कथा वस्तु महाकाव्यों से ली जाती है। यद्यपि सामाजिक कथा वस्तु तथा प्रेम कहानियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, द्रविड़ मुनेत्र कशघम के लेखकों द्वारा जाति और पारंपरिक धर्म के विरुद्ध प्रचार के लिए फिल्मों के उपयोग का प्रभाव बढ़ा है। तमिल फिल्में मैसूर में लोकप्रिय हैं और बड़े कस्बों और शहरों में उनका हफ्तों चलना आम बात है। कभी कभी उनकी विषय वस्तु प्रादेशिक इतिहास और प्रादेशिक संतों के जीवन से ली गई होती है, पर विषय वस्तु जो भी हो, पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा सामाजिक, हर फिल्म लंबी होती है। उसमें गीत और नृत्य तथा हास्य और प्रेम के प्रसंग अवश्य होते हैं। जनवादीकरण से चाहे फिल्मों के द्वारा हो या आकाशवाणी के द्वारा हो अथवा लोकप्रिय पुस्तकों और पत्रिकाओं में हो, पारंपरिक संस्कृति के तत्व में मूलभूत परिवर्तन आते हैं। बुद्धजीवी और शुद्धतावादी इसे ग्रामीकरण कहेंगे, पर दिलचस्प बात यह है कि एक ओर उसमें प्रदेश, भाषा, संप्रदाय और जाति जैसी विशिष्टतावादी वृत्तियों के लिए आवेदन है, तो दूसरी ओर शीर्ष नृत्य और गीत का सार्वजनिक आकर्षण भी है। मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जब यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू धर्म की बहुत सी बुराइयों और दुर्बलताओं के लिए उस पर प्रहार करना शुरू किया, तो हिंदू समाज के कट्टर पंथियों को लगातार बचाव करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यद्यपि नए हिंदू अभिजन इन प्रहारों से बहुत रुष्ट थे, पर उनका स्वयं इतना पश्चिमीकरण हो चुका था कि वे अपने धर्म को आलोचनात्मक दृष्टि से देख सकें। इस भांति हिंदू समाज और धर्म के सुधार और हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या का एक लंबा युग प्रारंभ हुआ। इन सुधारकों का मार्ग सरल न था। वास्तव में वे हिंदू और भारतीय समाज और संस्कृति के आधुनिकीकरण के लक्ष्य के लिए शहीद हो गए। उन्हें और उनके परिवारों को अपने संबंधियों की जाति वालों तथा ऐसे अन्य लोगों की आलोचना सहन करनी पड़ी जिनकी राय उन्हें चुभती थी। कुछ को जाति से निकाला भी गया। जैसा पहले कहा जा चुका है, पिछले 150 वर्ष में हिंदू धर्म में इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके हैं जिसमें सुधारकों का महत्वपूर्ण योग था कि आज के हिंदुओं और के लिए यह समझना कठिन है कि उनके पूर्ववर्तियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हिंदुओं में कट्टर पंथियों की प्रतिष्ठा, जिनमें प्रमुख वैदिक ब्राह्मण थे, हिंदू जीवन और संस्कृति के बढ़ते हुए लौकिकीकरण और पश्चिमीकरण के सामने निरंतर कम होती गई। बहुत समय तक वे हिंदू धर्म और समाज को सुधारने के प्रयासों के सर्वथा विरोधी, नहीं तो उनके प्रति सहानुभूतिहीन अवश्य थे। वैदिक ब्राह्मणों में जिनकी संस्कृत ज्ञान के कारण ख्याति थी, उनका लोग सम्मान करते रहे, पर आधुनिक स्कूल कॉलेजों में संस्कृत की शिक्षा प्रारंभ होने से भाषा के ऊपर उनका महत्वदायक एकाधिकार समाप्त होने लगा। संस्कृत ज्ञान कम से कम सिद्धांत रूप में जाति और धर्म से स्वतंत्र हर व्यक्ति के लिए खुल गया। तुलनात्मक भाषा विज्ञान, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र और इतिहास के अनुशासनों के विकास ने संस्कृत साहित्य के लिए व्यापक काल क्रम मूलक चौखटा प्रस्तुत किया और बहुत सी कल्प कथाओं और किंवदंतियों से उसे मुक्त कर दिया। जिन पंडितों ने इन नई बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें बौद्धिक काल दोष माना जाने लगा और पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और आम तौर पर विज्ञान की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है और अन्य विषयों की, विशेषकर मानविकी विद्याओं की प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई है। उच्चतम योग्यता वाले छात्र प्रतिष्ठादायक विषयों में प्रवेश चाहते हैं। प्रारंभ में माता पिता डॉक्टरों और इंजीनियरों को प्राप्त आर्थिक सुरक्षा और अच्छी आमदनी से प्रभावित हुए थे, पर अब प्रतिष्ठा भी छात्र और परिवार दोनों की उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। ब्राह्मण पुरोहित निरंतर लौकिक ब्राह्मणों द्वारा जीवन के लौकिकीकरण के विरुद्ध लड़ते रहे। मैसूर राज्य में स्थानीय हिंदुओं में ब्राह्मण ही सबसे अधिक नागर और शिक्षित हैं। शिक्षा में पहले से और बहुत आगे बढ़े होने के कारण उन्हें ही ऊंची सरकारी नौकरियों में बड़ा हिस्सा मिला और वे पेशों में भी उनकी ही प्रधानता रही। उनकी जीवन शैली में क्रमशः परिवर्तन होने के कारण उनके तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। बहुत से पश्चिमी ढंग के वस्त्र पहनने लगे। अपने काम के सिलसिले में बहुत सी जातियों और धर्मों के लोगों से उन्हें मिलना पड़ता और विभिन्न दैनिक कृत्यों का वे पहले की भांति कठोरता से पालन नहीं कर पाते थे। बहुत लोग बाल कटवाने लगे थे, जो सिखा रखने के वैदिक नियम के विरुद्ध पड़ता था। वैसे ही जैसे रोज हजामत बनाने की आदत से अन्य नियमों का उल्लंघन होता था। इन पथ भ्रष्टताओं ने तथा इनके साथ साथ मस्तक पर जाति सूचक तिलक लगाना छोड़ने और लौकिक वस्त्रों में भोजन के लिए बैठ जाने की प्रवृत्तियों ने पुरोहितों को बहुत क्रुद्ध कर दिया। इनसे भी गंभीर था खान पान के नियमों का उल्लंघन और युवती होने पर लड़कियों का विवाह। ये सब काम करने वाले लोगों के पास शक्ति और प्रतिष्ठा थी, पर धीरे धीरे मामूली लोग भी उनका अनुकरण करने लगे। अंग्रेजी राज के प्रारंभिक दिनों को छोड़कर पुरोहितों में अपने शक्तिशाली संरक्षकों को जाति से बाहर करने का हिम्मत न थी और वे जब लौकिकीकरण ब्राह्मणों में भी फैलने लगा तो अनिवार्य के तौर पर सिर झुकाने के सिवाय कोई चारा न बचा। इस बीच स्वयं पुरोहित की जीवन शैली में थोड़ा थोड़ा पश्चिमीकरण हुआ। बहुतों ने थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख ली और उसके प्रदर्शन में गर्व अनुभव करने लगे। खेद की बात यह है कि पुरोहित परिवारों की विभिन्न पीढ़ियों में होने वाले धंधों के परिवर्तनों का कोई अध्ययन नहीं हुआ है, पर उपलब्ध प्रमाणों से प्रकट होता है कि बंगलूर और मैसूर दोनों नगरों में पीढ़ी दर पीढ़ी धंधों में परिवर्तन ब्राह्मणों में ही सबसे अधिक हुआ है। नोएल गिस्ट ने 1951-52 में मैसूर और बंगलूर नगरों में अंतरजाति विभिन्नताओं का अध्ययन करके सूचित किया है कि विभिन्न पीढ़ियों के बीच धंधों की विभिन्नताएं अन्य जाति कोटियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे अधिक हैं। उदाहरण के लिए मैसूर नगर में 82.7% घरों के मुखियों के धंधे अपने पिताओं के धंधों से भिन्न थे और 76.8% उनके बेटों ने भी पिता से भिन्न धंधे अपना लिए थे। गैर ब्राह्मण समूह में विभिन्नताएं क्रमशः 55.7% और 49.4% थी और अनुसूचित जातियों में 44.9% और 56.8%। गिस्ट की वानगी में वैदिक और लौकिक ब्राह्मणों में अंतर नहीं किया गया है, पर यह मानने का कोई कारण नहीं। लौकिकों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं से वैदिकों को छूट थी। स्वयं अपने अनुभव में मैं मैसूर में अपने बहुत से समकालीनों को याद कर सकता हूँ जो वैदिक तथा कट्टर परिवारों से आए थे पर जिन्होंने लौकिक रोजगार चुने। तो संक्षेप में पुरोहिती प्रभुत्व और प्रतिष्ठा के क्रमशः क्षीण और पुरोहितों के लौकिकीकरण ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें पुरोहितों को धार्मिक और सामाजिक सुधार के मामलों में पहल करने का कोई साहस नहीं रहा। उनके पास न तो इतनी बौद्धिक क्षमता है न सामाजिक प्रतिष्ठा कि हिंदू धर्म की ऐसी पुनर्व्याख्या का भार उठाएं जो आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल हो। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही पुनर्व्याख्या पश्चिमीकृत हिंदू अभिजन द्वारा की गई है। ये अभिजन कर्मकांड विरोधी रहे हैं और उनमें प्रचलित यज्ञों विश्वासों और व्यवहारों पर नाक भौं चढ़ाने की प्रवृत्ति रही है। इस कारण हिंदू धर्म का बहुत सा तत्व निकल गया है। ऊपर प्रस्तुत परिस्थितियों से एक तथ्य उजागर हो जाता है कि ईसाई धर्मों से भिन्न हिंदू धर्म का कोई ऐसा सर्वव्यापी संगठन और अधिकारी सोपान नहीं है जिसका काम बदलती हुई परिस्थितियों में उसकी व्याख्या करना हो। यह सही है कि कुछ हिंदू संप्रदायों का जैसे स्मार्तों श्री वैष्णवों और माधवों का लिंगायतों तथा कई दूसरों का विस्तृत संगठन है जिसका प्रधान कोई धार्मिक गुरु होता है, पर इन धर्म गुरुओं की प्रभुता अपने संप्रदाय या संप्रदाय की शाखाओं के भीतर ही होती है, संपूर्ण हिंदू धर्म के लिए नहीं। हिंदू धर्म की एक अन्य विशेषता रही है सामाजिक ढांचे से अटूट संबंध, नहीं तो उस पर असाधारण निर्भरता। सामाजिक ढांचे के तीन मुख्य तत्व हैं जाति, ग्रामीण समुदाय और परिवार व्यवस्था। हिंदू भारत में राजनीतिक प्रधान राजा, समाज व्यवस्था तथा जाति का भी प्रधान होता था। राज्य के साथ हिंदू धर्म का संबंध मुसलमानों द्वारा भारत के बड़े भाग पर अधिकार के साथ बदल गया। कुछ मुसलमान शासक हिंदू धर्म के प्रति सहनशील थे, पर कुछ अन्य काफिरों को सच्चे दीन की शरण में लाने को तैयार रहते थे और गैर मुसलमानों पर जजिया लगाते थे। इसके विपरीत अंग्रेजों ने कुल मिलाकर सब धर्मों के प्रति तटस्थता बरती। यद्यपि इंग्लैंड की चर्चा भारत में भारतीय राजस्व से चलती थी और यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारकों को अंग्रेज शासकों से पहले अपने धार्मिक सांस्कृतिक और नस्ल के संबंधों के कारण विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। केवल देशी रियासतों में जहां हिंदू राजा थे जैसे नेपाल, त्रिवांकुर, कोचीन, मैसूर, बड़ौदा, जयपुर और कश्मीर, शासक वर्ग जाति और मठाधिपतियों की नियुक्ति के विषय में अपने पारंपरिक दायित्वों का पालन करते थे। नेपाल का हिंदू राज्य देश भर की अन्य सभी हिंदू रियासतों की तुलना में कहीं अधिक परंपरा प्रेमी था और आज भी है, और आज नेपाल ही संसार में एकमात्र हिंदू राज्य है। कुछ ही समय पहले तक नेपाल की दंड संहिता शास्त्रों पर आधारित थी और सामाजिक, धार्मिक और फौजदारी के अपराधों पर एक ही क्रिया विधि से विचार होता था। ब्राह्मणों को प्राण दंड नहीं दिया जाता था और गोहत्या पर मृत्यु दंड तक मिल सकता था। आगामी प्रवृत्तियों को समझने के लिए हिंदू धर्म के एक केंद्रीय संगठन की अनुपस्थिति और हिंदू धर्म तथा सामाजिक ढांचे के प्रतिपालन के लिए राज समर्थन के अभाव पर जाति, ग्रामीण समुदाय और परिवार व्यवस्था तीनों संस्थाओं में होने वाले मूलभूत परिवर्तनों के साथ ही विचार करना चाहिए। जाति में होने वाले परिवर्तनों का विवेचन मैं पहले कर चुका हूं और उन्हें मैं यहां नहीं दोहराऊंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बढ़े हुए लौकिकीकरण और गतिशीलता के परिणाम स्वरूप और समानतावादी विचारधारा के प्रसार के कारण जाति व्यवस्था अब उन मूल्यों को कायम नहीं रख सकी है जो परंपरा से हिंदू धर्म के आवश्यक अंग समझे जाते हैं। भारतीय ग्रामीण समुदाय में जो परिवर्तन हुए हैं उनके परिणाम स्वरूप उसका अधिक व्यापक आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक व्यवस्थाओं से अधिक प्रभावी एकीकरण हुआ है। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर दूसरे महायुद्ध के बाद से ग्रामीण संचार साधनों में व्यापक सुधार, राष्ट्रीय से लगा कर ग्राम तक विभिन्न स्तरों पर सर्वव्यापी बालिक मताधिकार और स्वशासन का प्रारंभ, अस्पृश्यता का उन्मूलन, देहाती जनता में शिक्षा की बढ़ी हुई लोकप्रियता और सामुदायिक विकास योजना, इन सबके सबसे गांव वालों की आकांक्षाएं और धारणाएं बदलती जा रही हैं। शिक्षा की अच्छी जिंदगी की इच्छा व्यापक है और बहुसंख्यक लोग अब अपने पूर्वजों की तरह रहते जाने को तैयार नहीं है। वास्तव में आज भारत के गांव कलहहीन, सहकारितापूर्ण, छोटे छोटे गणतंत्रों से बहुत दूर है, जैसा कुछ लोग उनके होने की कल्पना करते हैं। बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि वे सच्चे जातियों और अछूतों के बीच, जमींदारों और काश्तकारों के बीच, दकियानुषियों और प्रगतिशीलों के बीच, और अंत में विभिन्न प्रतिद्वंदी गुटों के बीच संघर्ष की रंगभूमि में बने हुए हैं। हर जगह सामाजिक जीवन पहले की अपेक्षा अधिक उन्मुक्त है, क्योंकि अपवित्रता की धारणाओं का जोर कुछ कम हो गया है। लौकिकीकरण और राजनीतिकरण बढ़ रहे हैं और गांव वाले कुओं, सड़कों, अस्पतालों और बिजली की मांग करने लगे हैं। किंतु गांव के जीवन में लौकिकीकरण का बढ़ा चढ़ा कर देखना बड़ा आसान है। यह सच है कि अंतर्गमन की इकाई कुछ विस्तृत हो गई है, पर यह दूसरों की अपेक्षा उच्च जातियों के बारे में अधिक सही है। इसके अतिरिक्त यह विस्तार पारंपरिक लीकों पर परिस्थिति को स्थूल ढंग से यूं रखा जा सकता है कि उप जातियों अथवा उप जातियों के बीच रुकावटों का टूटना तो शुरू हो गया है, पर विस्तृत संरचनात्मक अथवा सांस्कृतिक दूरी को जोड़ने वाले विवाह अभी कदाचित ही होते हैं। यानी किसानों ने अभी गड़रियों में, लुहारों में या कुम्हारों में विवाह करना नहीं शुरू किया है, पर एक ही भाषा भाषी किसान उपजातियां समीप आ रही हैं। किंतु संरचनात्मक और सांस्कृतिक छलांग वाले विवाह कभी कभी बड़े शहरों के नए अभिजन में होते हैं। विभिन्न जातियों के बीच खान पान और पहले की अपेक्षा कुछ उदार है, पर केवल कुछ ही। मंदिर प्रवेश और देहाती कुओं से पानी लेने के अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करना चाहने वाले हरिजनों के विरुद्ध सारी स्पृश्य जातियां एक हो जाएंगी। जिन प्रक्रियाओं ने जाति और ग्रामीण समुदाय को प्रभावित किया है, उनमें परिवार व्यवस्था पर भी प्रभाव डाला है। यह सभी स्तरों पर और समाज के प्रत्येक वर्ग में हुआ है, पर पश्चिमीकृत अभिजन में, यानी बड़े बड़े कस्बों और शहरों में रहने वाली उच्च जातियों में विशेष रूप से यह हुआ है। संयुक्त परिवारों और पारंपरिक व्यवस्था के पीछे यह धारणा थी कि कृषि योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और स्थान मूलक गतिशीलता तथा धंधों की विविधता का अभाव है। खुले आम भूमि की बिक्री ने भी, जो अंग्रेजी राज के दिनों में लोकप्रिय हुई, लोगों की गतिशीलता में योग दिया। संचार साधनों के विकास, नागरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि और दफ्तर, कारखाने या सरकार में नौकरी से प्राप्त नकद आमदनी की प्रतिष्ठा में संगोत्र समूहों, कारखाने या सरकार में नौकरी से प्राप्त नगद आमदनी की प्रतिष्ठा ने संगोत्र समूहों को अपने जन्म के गांवों और कस्बों से बाहर बिखरा दिया। किंतु यह संकेत देना अत्यधिक अति सरलीकरण होगा कि भारतीय परिवार व्यवस्था संयुक्त से बदलकर ऐच्छिक प्रकार की हो गई है या होती जा रही है। प्रक्रिया अत्यंत उलझी हुई है और विभिन्न प्रदेशों और समाज के विभिन्न वर्गों में परिवार के रूपों और परिवर्तन को पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है। परिवारों के आकार की गणना अथवा उनकी संगोत्रीयता की रचना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक शहरी परिवार रचना में पूर्णतः एकिक हो, पर उसके संगोत्रीयता संबंधी कर्तव्य, दायित्व और विशेषाधिकार बहुत महत्वपूर्ण रूपों में अतिक्रमण करते हैं। बहुत से शहरी परिवार गांव में अधिक कई सौ मील दूर कस्बों में रहने वाले प्रमुख सगोत्र समूह के उपग्रह मात्र होते हैं। भारत परिवार व्यवस्था भी जाति की भांति लचीली है और उसकी आधुनिक दबावों के अनुकूल ढल जाने की बड़ी क्षमता दिख पड़ती है। किंतु यह फिर भी सच है कि हिंदुओं की परिवार व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और ये प्रक्रियाएं नए अभिजन समूहों में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उन्हीं में स्थानमूलक गतिशीलता अधिक है और बड़े नगरों में अलग गृहस्थी बसाने वाले निश्चय ही ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहते हैं जो छोटे कस्बों या गाँव में पारंपरिक संयुक्त परिवार के परिवेश से महत्वपूर्ण बातों में भिन्न होता है। शहरी गृहस्थी में प्रायः वे गुरुजन नहीं होते जो न केवल परंपराबद्ध होते हैं बल्कि साथ ही जिन्हें उत्सवों तथा अन्य अवसरों पर पालन करने के जटिल कर्मकांड की जानकारी होती है। उनकी उपस्थिति मात्र परंपरा के पक्ष में नैतिक प्रभाव डालती है। जैसा मेरे आंध्र प्रदेश ब्राह्मण साम्यवादी सूचनादाता ने बताया था कि अपनी दादी के कारण वह भोजन के समय पवित्र वस्त्र पहन लिया करता था। स्त्री शिक्षा ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि छोटी लड़कियां अपनी माँ या दादी से कर्मकांड सीखने का समय ही नहीं मिलता और बड़े शहरों की छोटी गृहस्थियों में अक्सर वे वृद्धाएं नहीं होती जिनके पास उनका ज्ञान और अवकाश दोनों होते हैं। शिक्षित पत्नी यदि चाहे भी तो उसके पास इतनी पारंपरिक संस्कृति नहीं होती जिसे वह अपने बच्चों को दे सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिजन गृहस्थियां अत्यधिक प्रतियोगिता प्रधान शिक्षा और रोजगार व्यवस्था के मूल्यों की समर्थक हो गई हैं। बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने, उनकी पढ़ाई तथा अन्य गतिविधियों की देखभाल करने और उनकी भावी रोजगार की चिंता करने में ही माता पिता की शक्ति चुक जाती है, किंतु नए अभिजन समूहों में परिवार व्यवस्था में होने वाले ये परिवर्तन अन्य प्रवृत्तियों द्वारा कुछ संतुलित हो जाते हैं। बंबई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जैसी बड़े नगरों में भाषा, संप्रदाय और जाति के आधार पर ऐच्छिक संगठनों के बन जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये बातों में पारंपरिक, पारस्परिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के अभाव को पूरा कर देते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे नगर में भारत के लगभग प्रत्येक भाषाई समूह के ऐच्छिक सांस्कृतिक अथवा अन्य संगठन है जो प्रत्येक भाषा के बोलने वालों के लिए उनका अपने घर का सा परिवेश बनाने का प्रयास करते हैं। संगीत गोष्ठियां की जाती हैं, नाटक खेले जाते हैं, हरी कथाओं का आयोजन होता है, प्रादेशिक उत्सव मनाए जाते हैं और प्रादेशिक राजनीतिज्ञों तथा प्रमुख व्यक्तियों का स्वागत किया जाता है। किसी हद तक भाषा के आधार पर आवास का एकत्रीकरण भी होता है और यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई आवास योजनाओं तक में हो जाता है, जबकि कहने को तो वह फ्लैट और घरों को अलाट करने में कोई प्रादेशिक दावा नहीं स्वीकार करती। घर की याद से दुखी दक्षिण भारतीय अथवा बंगाली ऐसे क्षेत्र में मकान किराए पर लेना चाहता है जहां अन्य दक्षिण भारतीय या बंगाली रहते हों और शीघ्र ही वहां ऐसी दुकानें खुल जाती हैं जिन पर वही मसाले, अचार, सब्जियां, घर गृहस्थी के बर्तन और कपड़े मिलने लगते हैं जिनका वह अपने क्षेत्र में अभ्यस्त था। अपने भाषाई क्षेत्र से दूर रहने वाले एक शिक्षित सफेद पोश दक्षिण भारतीय अथवा बंगाली के सामाजिक कार्यकलाप में निश्चय ही ऐसे लोग भी होते हैं जो भिन्न भाषाएं बोलते हैं, पर उसकी अपनी भाषा बोलने वालों की शायद बहुलता रहती है। हो सकता है किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए या किसी रिश्तेदार अथवा अपने कस्बे के रहने वालों के लिए नौकरी जुटाने में उसे किसी हिंदी या पंजाबी बोलने वाले तक पहुंचना पड़े, पर यह प्रायः अपनी भाषा बोलने वाले बिचौलियों के द्वारा ही करता है। इस सब के बावजूद किसी बड़े नगर में जो पारंपरिक परिवेश फिर से रचा जाता है वह पीछे छूटे हुए परिवेश से महत्वपूर्ण बातों में भिन्न होता है। वह उसका अधिक उन्मुक्त, अधिक सर्वदेशीय और सुप्रवाही रूप होता है और उसमें पारंपरिक परिवेश की वे बहुविध सूक्ष्मताएं, जटिलताएं, कठोरताएं, सूक्ष्म विभिन्नताएं और बाध्यताएं नहीं होती। इसके अलावा वह परिवेश आप्रवासी माता पिता की पीढ़ी के लिए अधिक होता है, संतान पीढ़ी के लिए इतना नहीं। संतान अपने माता पिता के जन्म स्थानीय परिवेश को अपना स्वदेश नहीं समझती और बहुत से तो कुछ समय के लिए भी वहां जाना नहीं पसंद करते। स्थानीय संस्कृति और संस्थाओं में उनकी सहभागिता अपने माता पिता की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती है। कभी कभी भाषा और जाति के बंधनों को तोड़कर उनके तथा स्थानीय लोगों के बीच विवाह भी होते हैं। लौकिकीकरण और राजनीतिकरण के ने मठों और मठाधीशों को भी प्रभावित किया है। यहाँ मेरा इशारा उन आश्रमों या अन्य संगठनों की ओर है जो अंग्रेजी राज के दिनों में उत्पन्न हुए, बल्कि उन पारंपरिक और अंग्रेज पूर्व मठों की ओर है, जैसे स्मार्तों, श्री वैष्णव, माधवों और लिंगायतों के मठ। क्रमशः शिक्षित हिंदुओं में यह भावना बढ़ी है कि इन संगठनों की संपत्ति और प्रतिष्ठा का जनता के सामाजिक कल्याण और शिक्षा के लिए उपयोग होना चाहिए। यह भी एक कारण है कि राज्य विधान सभाओं ने मंदिरों और मठों के प्रबंध के विषय में सरकार को पर्याप्त अधिकार देने के जो कानून स्वीकृत किए हैं उनका अवधि अधिक विरोध नहीं हुआ है। अत्यधिक संगठित संप्रदाय लिंगायतों ने इस नई मांग के प्रति बहुत रुझान दिखाया है और लिंगायत मठ अपने अलग छात्रावास, स्कूल और कॉलेज चलाते हैं। भूमि संबंधी कानूनों ने हर जगह ऐसी रियायती पट्टे खत्म कर दिए हैं, जैसे जमींदारी, जागीरदारी, इनाम जोड़ी। जिनके पास ऐसे पट्टे थे उन्हें मुआवजा देकर भूमि पिछले काश्तकारों और पट्टेदारों को बेच दी गई है। जो भूमि जमींदारों को खुद कास्त में थी वह इस कानून से मुक्त थी और जैसी कि आशा की जा सकती है बहुत से जमींदारों ने कानून अथवा कानून से बाहरी भी कमजोरियों का फायदा उठाया है, जितनी बनी उतनी भूमि बचाने का प्रयास किया। बहुत से राज्यों में मंदिरों की जमीन पर भी इस कानून का असर पड़ा। उड़ीसा में उच्च न्यायालय में ने यह निर्णय किया कि राज्य को अनिवार्यतः मुआवजा देकर वे भूमियां हस्तगत कर लेनी चाहिए जो किसी हिंदू देवता को समर्पित थी। चिंतामणि बनाम उड़ीसा राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर, 1958। मैसूर में 1955 के धार्मिक और खैराती इनाम अधिनियम ने सरकार को अधिकार दिया कि वह उन भूमियों को ले ले जो महाराजा ने धार्मिक संस्थाओं को दे रखी थी। मुआवजे के तौर पर राज्य अब संस्थाओं को हर वर्ष धन देता है। कई राज्य विधानसभाएं इस समय भूमि की जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में लगी हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम और पश्चिमी बंगाल ने मंदिरों की भूमियों को इन अधिकतम सीमाओं से छूट देना स्वीकार कर लिया है। कुछ अन्य राज्यों में, विशेषकर दक्षिण भारत में जहां कुछ सबसे संपन्न मंदिर हैं, यह निश्चित कर दिया गया है कि मंदिर के अधिकार में अधिकतम भूमि कितनी रहे, यद्यपि यह व्यक्तिगत भूस्वामियों से अधिक है। जिन शिक्षित हिंदुओं को ऐसा कानून अनुचित लगा उन्होंने राज्य सरकार की तीव्र आलोचना की और मठाधिपतियों ने यह निरंतर हस्तक्षेप करने वाले राज्य के विरुद्ध उपयोग बंधु समझा। मठों की आय में कमी होने से कुछ मठाधिपति धन के लिए अपने अनुयायियों की ओर मुड़े। वे धन संग्रह करने और लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए यात्राएं करने लगे और इन गतिविधियों के समाचार भाषाई तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में छपे। मठाधिपतियों को जनसाधारण का तो आदर प्राप्त है ही, बहुत से राजनीतिज्ञ भी उन्हें प्रसन्न रखना चाहते हैं। बदले में वे भी राजनीतिक दलों और विधानसभाओं में बंधुओं की उपयोगिता समझते हैं। भारतीय जीवन में मठाधिपतियों और अन्य प्रमुख धार्मिक व्यक्तियों के बदलते हुए स्थान के अनुशीलनों से लौकिकीकरण विषयक साहित्य में मूल्यवान अभिवृद्धि होगी। लौकिकीकरण की प्रक्रिया अंग्रेजी राज से प्रारंभ हुई थी और यह समय के साथ अधिकाधिक व्यापक और गहरी हुई है, पर न तो यह इस काल की एकमात्र प्रक्रिया है और न यह सदा शुद्ध और अमिश्रित हो रही है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीयता, जो एक लौकिक तत्व है, एक अवस्था में हिंदू धर्म के साथ उलझ गई थी। हिंदू धर्म ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ में एक ऐसे राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया है। अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन जितना इस प्रथा की अमानवीयता के कारण था, उतना ही इस चेतना के कारण भी कि हरिजन यदि दूसरा कोई धर्म ग्रहण करने लगे तो उससे कितनी बड़ी राजनीतिक क्षति होगी। सांप्रदायिक शब्द जो अंग्रेजी भाषा को भारत की देन है, धर्म के राजनीति के साथ उलझ जाने की प्रवृत्ति का ही सूचक है। संस्कृतिकरण न केवल नए वर्गों और क्षेत्रों में फैल रहा है, वह उन समूहों में भी बढ़ रहा है जो अपनी जीवन शैली में पहले ही संस्कृतिकरण कर चुके हैं। संस्कृतिकरण के प्रसार में सामूहिक माध्यमों से और ऐसी लौकिक प्रक्रियाओं से सहायता मिलती है, जैसे शिक्षा का प्रसार और स्थान मूलक तथा सामाजिक दोनों प्रकार की अधिक गतिशीलता। कानून की दृष्टि से सब भू मुक्तियों की समानता की धारणा और अस्पृश्यता के उन्मूलन से एक ऐसी संस्कृति समस्त हिंदू समुदाय के लिए खुली जा रही है, जिस पर अब तक एक छोटे पारंपरिक अभिजन का एकाधिकार था। कुछ विधानसभाओं के कार्यों के प्रभाव, जैसे बहुत से राज्यों में महानिषेध या मध्य निषेध का प्रारंभ और हिंदू मंदिरों में पशु पक्षियों की बलि पर प्रतिबंध, ऐसे हैं जो सरकार को अनजाने ही किंतु प्रबल रूप में संस्कृतिकरण का साधन बना देते हैं। विविध संस्थाओं, जाति, ग्रामीण संप्रदाय और परिवार व्यवस्था में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण हिंदू धर्म एक हद तक किसी बात से बंधा नहीं रह गया है, पर इससे भी सत्य एक अंश ही है। पुनर्व्याख्यायित हिंदू धर्म को ढांचा देने के लिए नई शक्तियां उभर रही हैं। ये शक्तियां अभी तक कुछ अनिश्चित और उदयशील हैं। उनमें एक ओर तो रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज जैसी नई संस्थाएं हैं और दूसरी ओर वे पुराने संप्रदाय और मठ हैं जो अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में बदलते जा रहे हैं। अन्य पारंपरिक कार्य और संस्थाएं जैसे भजन मंडलियां, हरि कथाएं और संतों के पंथ भी नए ढांचे के विकास में सहायता दे रहे हैं। मिल्टन सिंगर ने विस्तार से वर्णन किया है कि राधा कृष्ण भजन मंडली आजकल मद्रास में कैसे कार्य करती है, और उसका कहना है कि हाल के वर्षों में उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। भजन मंडलियां सारे भारतवर्ष में हैं और नियमित कार्यकलाप के रूप में उनका विकास संतों ने किया था और भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते थे। भजन मंडलियां सब वर्गों के हिंदुओं में देहाती और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय है। भजन मंडलियों में कर्मकांड का अपेक्षया अभाव, उनका गहरा सौंदर्य मूलक और भावात्मक आकर्षण और जाति भेद के अतिक्रमण की उनकी क्षमता, ऐसी ही कुछ बातों के कारण वे शहरी और शिक्षित हिंदुओं में इतनी लोकप्रिय हैं। यद्यपि भजन मंडलियां कभी कभी किसी संत की भक्ति के इर्द गिर्द भी संगठित होती हैं, पर संत सदा भजन मंडलियों से जुड़े नहीं होते और भक्त अलग से अपने घर में एकांत में भी संत की पूजा कर सकते हैं। यह जीवित हो कि संत के आश्रम की और मृत हो तो उसकी समाधि की कभी कभी यात्रा का भी रिवाज है। संतों के पंथों की प्रथा पुरानी है जो आधुनिक युग में भी चली आती है। ऐसे पंथों से कभी कभी संप्रदाय भी बन जाते हैं। संप्रदाय की आस्था पुश्तैनी हो सकती है और इस तरह पूरे घराने और उपजातियां दूसरों से अलग हो जाती हैं, अथवा वे सर्वथा ऐच्छिक हो सकती हैं, जैसे आधुनिक संतों के विषय में। जहां आस्था ऐच्छिक हो वह आमतौर पर जाति, प्रदेश बल्कि धर्म की भी उपेक्षा करती है। उदाहरण के लिए साईं बाबा मुसलमान संत हैं जिनकी भक्ति बहुत से हिंदू करते हैं, जिनमें अनेक शिक्षित हैं, संत के चित्र रखे जाते हैं और उनकी पूजा होती है और संत द्वारा अथवा उनके विषय में लिखी हुई रचनाओं को पढ़कर उन पर चर्चा की जाती है। अधिकांश हिंदू अपने धार्मिक अनुष्ठानों और विश्वासों के विषय में मुखर होते हैं और पहली ही बार रेल में, बस में या होटल में मिलने वाले व्यक्ति भी सहज ही धार्मिक चर्चाएं करने लगते हैं। जो संगठन भारतीय संस्कृति और चिंतन के प्रचार की घोषणा करते हैं, वे हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। भारत का प्राचीन साहित्य और चिंतन सब हिंदू, बौद्ध और जैन है और प्राचीन चिंतन को लोकप्रिय बनाने वाली पुस्तकें ऐसे विचारों का प्रसार किए बिना नहीं रह सकती जो इन तीन धर्मों में माने जाते हैं। वास्तव में भारत जैसे देश में जिसका लंबा लिपिबद्ध इतिहास हो और जहां धर्म सर्वव्यापी रहा हो, सांस्कृतिक और धार्मिक के बीच स्पष्ट रेखा खींचना कठिन है। भारतीय संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला और नृत्य ने हिंदू धर्म प्रतिमा विद्या और पुराणों से बहुत ग्रहण किया है। 20वीं शताब्दी में एक नई विशेषता यह है कि मंदिर और उत्सव के पारंपरिक संदर्भों से पृथक और शुद्ध सौंदर्य मूलक रूपों की भांति भारतीय नृत्य और नृत्य नाट्य का उदय हो रहा है। सरकार भी कानून तथा अन्य उपायों द्वारा हिंदू धर्म के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योग दे रही है और ऐसा वह इस तथ्य के बावजूद कर रही है कि संविधान भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। हिंदुओं के वैयक्तिक और पारिवारिक कानूनों में भी परिवर्तन किए गए हैं। एक ऐसे अधिक विवाह कानून द्वारा दंडनीय है, तलाक और अंतर जाति तथा विधवा विवाह की अनुमति है और विधवाओं तथा पुत्रियों को पूर्वजों की अचल संपत्ति में हिस्सा दिया गया है। राज्यों के कानूनों द्वारा हिंदू मंदिरों और मठों के प्रबंध में मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसा पहला प्रयत्न 1927 में मद्रास दान अधिनियम में था और उसके अंतर्गत सरकार ने हिंदू दान के प्रबंध के लिए एक अध्यक्ष सहित आयुक्त मंडल नियुक्त किया था। इसके स्थान पर 1951 में मद्रास हिंदू धार्मिक और खैराती दान अधिनियम लागू हुआ, जिसके द्वारा एक आयुक्त की अध्यक्षता में एक नया सरकारी विभाग स्थापित किया गया। इस भांति मंदिरों और मठों की देखभाल का काम एक व्यवस्थापकीय आयोग से सीधे एक मंत्री के अधीन सरकारी विभाग के पास आ गया। इस अधिनियम को जो आयुक्त को बहुत अधिकार प्रदान करता था, अदालतों में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी इस आधारों धाराओं को अवैध घोषित किया। 1959 में एक नया अधिनियम न्यायालय की आपत्तियों को दूर करने के उद्देश्य से स्वीकार किया गया और यद्यपि उसमें मठों और सांप्रदायिक मंदिरों के समक्ष आयुक्त के कुछ अधिकारों को कम किया, आम हिंदू जनता के मंदिरों के ऊपर की पूरी व्यवस्था आयुक्त के व्यापक अधिकारों सहित फिर भी पूर्ववत रही। जैसा कहा जा चुका है, इन मंदिरों में बहुसंख्यक हिंदू धार्मिक संस्थाएं आ जाती हैं। मैसूर, बंबई, बिहार और उड़ीसा आदि अन्य राज्यों ने भी हिंदू धार्मिक दान के प्रबंध का नियंत्रण करने के लिए कानून बनाए हैं, पर वे मद्रास जैसे दूर व्यापी नहीं है। 1960 में भारत सरकार ने हिंदू धार्मिक दान के प्रबंध की जांच करने और उसमें सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए सर सीपी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में हिंदू धार्मिक दान आयोग नियुक्त किया। आयोग की रिपोर्ट 1962 में तैयार हुई। उसमें मांग की कि मंदिरों की सरकारी देखभाल के लिए जिन राज्यों में अभी तक कानून नहीं बने हैं, जैसे आसाम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, वहां तुरंत ऐसे कानून बनाए जाएं और पुजारियों को संस्कृत, धर्मशास्त्र और कर्म कांड की शिक्षा देने के लिए संस्थान और मानव विधाओं के साथ साथ धर्म के अध्ययन के लिए धर्मशास्त्रीय कॉलेज स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग ने सिफारिश की कि भारत सरकार अभी संप्रदायों के दान को नियमित करने के लिए समान कानून बनाने पर बात पर विचार करे। बहुत से राज्यों में दान की निधि को अपव्यय से बचाने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों के परिणाम स्वरूप ऐसे सरकारी विभाग स्थापित हो गए हैं जो वहां निर्धारित करते हैं कि हिंदू मंदिरों और मठ किस प्रकार चलाए जाएं और कैसे उनके धन का उपयोग हो। इस भांति तिरुपति के विख्यात मंदिर के विशेष कानून द्वारा संचालित धन का उपयोग एक विश्वविद्यालय, स्कूल, अनाथालय, अस्पताल आदि स्थापित करने में हुआ है। सारे दक्षिण भारत में तिरुपति नए हिंदू धर्म का प्रतीक और आदर्श बन गया है, जो वैयक्तिक निष्ठा और भगवत भक्ति की भेंट को मनुष्य की सेवा में समर्पित सामाजिक संस्थाओं के में रूपांतरित करता है। हिंदू धर्म में एक आधुनिक दृष्टि और नई सामाजिक दायित्व की भावना का समावेश हो रहा है। यह मूलभूत प्रकार का धार्मिक नवनिर्माण है, किंतु क्योंकि इस सुधार का माध्यम बहुत हद तक राज्य है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि निष्ठावान हिंदू अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करने से आपत्ति करें। इस भांति 20वीं शताब्दी के मध्यवर्ती दशकों में राज्य हिंदू धर्म की पुनर्व्याख्या का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है और ऐसा भारत के धर्म निरपेक्ष राज्य होने की घोषित नीति के बावजूद हुआ है। राज्य सबसे महत्वपूर्ण होने पर भी यह कार्य करने वाला एकमात्र संगठन नहीं है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हिंदू महासभा और जनसंघ जैसे राजनीतिक दल और लड़ाकू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सांस्कृतिक संगठन हिंदू धर्म के निरंतरण और पुनर्व्याख्या के माध्यम हो जाते हैं। तो संक्षेप में हिंदू धर्म अधिकाधिक यद्यपि बहुत धीमी गति से अपनी जाति संगोत्रता और ग्रामीण समुदाय वाले पारंपरिक सामाजिक ढांचे से विलग होता जा रहा है और राज्य राजनीतिक दलों और भारतीय संस्कृति के प्रोत्साहक संगठनों से जुड़ता जा रहा है। पारंपरिक संस्थाओं में जैसे मठों और मंदिरों, संतों के पंथों, भजन मंडलियों और तीर्थ यात्राओं में लचीलापन और नई परिस्थिति के अनुरूप ढलने की क्षमता दिखाई पड़ी है। फिल्म, रेडियो, पुस्तकें और समाचार पत्र जैसे सामूहिक माध्यम हिंदू धर्म को हिंदू जनता के सभी वर्गों तक पहुंचाने में योग दे रहे हैं और लोकप्रिय बनाने की इस प्रक्रिया में ही धर्म की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं।